SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। दिल्ली का चुनावी महाभारत भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के वनवास के बाद बड़े अंतर से जीत लिया है। जबरदस्त प्रचार से उत्साहित भाजपा ने एग्जिट पोल्स के अविश्वसनीय आंकड़ों को सही साबित करते हुए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर ला खड़ा किया। हालांकि भाजपा ने आम आदमी पार्टी से केवल 3.6% ज्यादा वोट पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित कई दिग्गज नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन को पराजित किया। कांग्रेस लगातार तीसरी बार शून्य पर सिमटी, लेकिन अपना वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। भाजपा के हाई वोल्टेज प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन उनके निशाने पर आगे के चुनावों को देखते हुए मुख्यतः कांग्रेस ही रही।
आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।
हार को मायूसी से स्वीकारते हुए श्री केजरीवाल ने भाजपा को बधाई दी।
मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे।
दिल्ली के अलावा भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी बड़ा उलटफेर करते हुए 8 साल बाद समाजवादी पार्टी को हरा दिया। लोकसभा चुनाव में हुई अयोध्या का हार का बदला लेते हुए भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा मतों से हराया। भाजपा ने इस जीत के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा राम के अपमान को जिम्मेवार ठहराया, जबकि सपा ने हार का ठीकरा प्रशासन की मिलीभगत और गुंडागर्दी पर फोड़ा। महाराष्ट्र के विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तीनों राजनीतिक दलों कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से मतदाताओं को जोड़े जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत और एनसीपी पवार सांसद सुप्रिया सूले के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में मात्र 5 महीने के अंतराल में लगभग 40 लाख नए वोटर बनाने और महाराष्ट्र के मतदाताओं की संख्या राज्य की जनसंख्या से ज्यादा होने पर न केवल सवाल खड़े किए बल्कि चुनाव आयोग से मतदाताओं की सूची देने की मांग भी दोहराई।
इलेक्शन कमीशन इज द फाइनल अथॉरिटी, वी आर आस्किंग दैम, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू अस हाउ देर आर मोर वोटर्स इन महाराष्ट्र देन द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव अस नाउ द वोटर लिस्ट सो वी कैन एक्सप्लेन इट एंड आई एम श्योर if they give us the voter list वी विल हैव अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर वेयर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल टू यू. एंड सो दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग द इलेक्शन कमीशन अगेन एंड अगेन. आवर पार्टी हैज आस्क्ड, देयर पार्टी हैज आस्क्ड, मल्टीपल पीपल हैव आस्क्ड, इनफॉर्मली वी हैव आस्क्ड, फॉर्मली वी हैव आस्क्ड. Every time the election commission says to us, nothing happens. And my concern is the strategy is to delay and destroy. We are the opposition and they need to give us this data as soon as possible.
इस संदर्भ में आपको बता दें कि मई 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटें जीती थीं, जबकि केवल 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी 288 में से सिर्फ 28 सीट पर सिमट गई थी. चुनाव आयोग ने जवाब में एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा कि ईसीआई के लिए मतदाता सबसे पहले आते हैं, इसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव की प्रमुख स्टेक होल्डर हैं. इलेक्शन कमीशन पार्टियों के विचारों, सुझावों और सवालों को गहराई से महत्व देता है. कमीशन पूरे देश में समान रूप से अपनाई गई चुनावी प्रक्रियाओं की जानकारी लिखित रूप में पूरे तथ्यों के साथ देगा. महाविकास अघाड़ी के दल इस मुद्दे पर न्यायालय का रुख भी कर सकते हैं. दिल्ली में जीत मिलने से आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना विदेश दौरा शुरू करेंगे. उनकी यात्रा का पहला चरण फ्रांस में होगा, जहां वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भारत फ्रांस के परस्पर सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा करेंगे. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि भारत एआई समिट में किन मुद्दों की वकालत करेगा.
वी आर इंटरेस्टेड इन एआई एप्लीकेशंस दैट आर डिजाइंड, डेवलप्ड, डिप्लॉयड एंड यूज्ड इन अ सेफ, humane, responsible and trustworthy manner. There are of course issues related to the inclusive use and application and deployment of AI, and of course on the possible in a sense inevitable technology gap that we expect these kinds of developments to create, and which it is our effort to try and minimize as much as possible.
फ्रांस दौरे की समाप्ति पर प्रधानमंत्री मोदी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे पारस्परिक व्यापार, रक्षा सहयोग, टैरिफ्स, न्यूक्लियर रिएक्टर और हिंद प्रशांत महासागर सामरिक क्षेत्र पर चर्चा करेंगे. विदेश सचिव ने अमेरिका द्वारा हाल ही में बेड़ियों में जकड़े अवैध प्रवासी भारतीयों को मिलिट्री हवाई जहाज में भेजे जाने पर अपनी नपी तुली प्रतिक्रिया दी.
इफ देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज दैट आर ब्रॉट टू आवर अटेंशन दैट वी नोटिस एंड वी डू मेक आवर कंसर्न्स नोन टू द यूनाइटेड स्टेट्स दैट इट इज परहैप्स यू नो दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट can perhaps be avoided. These are conversations that we are having with the United States.
मणिपुर में 600 से अधिक दिनों से जारी जातीय हिंसा के चलते आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार शाम अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप ही दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है. उन्होंने नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तक श्री सिंह से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए कहा है. इस्तीफे का फैसला लेने से पहले श्री सिंह ने रविवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की. श्री सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि हिंसा, जानमाल के नुकसान के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने एन बीरेन सिंह को पद पर बनाए रखा, लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जाँच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने को मजबूर हो गए. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में शांति बहाल करने और लोगों के घाव भरने के लिए तुरंत मणिपुर जाने की सलाह भी दी. तो ये थे अब तक के समाचार. नमस्कार.